أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، حضرت امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے عنوان سے تیسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ دو قسطوں میں آپ کو بیان فرمایا تھا کہ امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک امام خمینی کے فلسفی افکار و نظریات ہیں، دوسرے امام خمینی کے کلامی افکار و نظریات ہیں، اور تیسرے امام خمینی کے فقہی اور اصولی اصول و نظریات ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان تین پر در حقیقت امام خمینی کا سیاسی نظریہ قائم و دائم ہے، اور در حقیقت سیاست جز دین ہے، تابع دین ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہے، اور تابع دین و شریعت و قرآن و عقل اور حکم خدا ہے. بس اس بنا پر ہم نے امام خمینی کے افکار سیاسی کو جو ہے اس کی پہلی دو قسطوں میں آپ کو فلسفی نظریات بیان کی تھی، کہ جس میں معرفت شناسی، ہستی شناسی اور انسان شناسی پہ گفتگو کی تھی. اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر کہ امام خمینی کے کلامی اور عقائدی کیا اصول و قوانین ہیں. یعنی در حقیقت کلامی لحاظ سے، عقائدی لحاظ سے آئیڈیولوجیکل پوائنٹس جو ہیں یا بیس جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہیں، اور یہ بہت ہی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے، کلام جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے، عقائد جو ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کریں جن کو یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اصول دین میں یا کلام میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے. یعنی انسان جو ہے وہاں پر اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے عقل، اپنے فہم و فراست اور اپنی دلیل و استدلال سے رائے قائم کرے گا. چنانچہ جتنے بھی عقائد ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، اور اس میں توحید، نبوت، معاد، امامت اور عدل وغیرہ جیسے اہم مباحث شامل ہیں. توحید، اس کے بعد نبوت، معاد، یہ وہ تین کامن چیزیں ہیں جو تمام مسلمین میں ہیں، اور امامت اور عدل دو ممتاز چیزیں ہیں جو تشیعی سے مربوط اور مخصوص ہیں. اسی طریقے سے دین سے ہماری کیا توقعات ہیں، دین کیا کرتا ہے، دین کیسے رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے افکار و نظریات کے جو بظاہر جن سے بحث کی جاتی ہے. اسلام کے کلامی عقائد میں اور اصول و قوانین میں، خصوصاً تشیع میں، یوں تو قرآن کریم، یعنی قرآن کریم جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مراد جو ہے وہ عام مسلمین تو ہیں ہی ہیں، کہ زمرت خالص تشیع ہے، کیونکہ تشیع زیادہ قرآن ہے، تابع قرآن ہے، تابع نبوت ہے، اصل نبوت ہے، اور نبوت سے ہی اس کی جڑیں ملی ہوئی ہیں. انا والی من نور واحد وسائر الناس من شجن شتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کونوا مع الصادقین، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جیسی آیات در حقیقت اس بات پہ گواہی دے رہی ہیں کہ تشیع اصل دین اور اصل قرآن ہے. مباحث کلامی میں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ خداوند عالم کی ہے، صرف اور صرف حاکمیت، الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا، اللہ ہی کی سرزمین پر قائم و دائم اور جاری و ساری ہے، اور یہ اس کو توحید کہا جاتا ہے. حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ اس عقیدے کو اپنے تمام سیاسی افکار و نظریات کی بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق حاکمیت جو مخصوص ہے، منحصر ہے، مربوط ہے صرف خداوند عالم سے. لہذا فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مسائل قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں، یا پیغمبر اکرم اور پیشوایان دین نے جو اللہ کی جانب سے آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے بعد بیان کیے ہیں، ان سب کی اصل اور اساس، ان تمام عقائد کی روح جو ہے وہ یہ ہے، اور جو ہمارے تمام عقائد کی بنیاد بنتی ہے وہ اصل توحید ہے، وہ توحید کا نقطہ ہے، وہ توحید ہے کہ جو ہمارے عقائد کی بنیاد بنتی ہے. اور اس قانون کے تحت، قانون توحیدی کے تحت، ہم معتقد ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس جہان کا اور تمام عالمین کا خالق و مالک، خالق بھی خدا ہے اللہ رب العزت ہے، اور مالک بھی اللہ رب العزت ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں. یعنی یہاں پر در حقیقت امام خمینی نے کوئی چار پانچ نکات عرض کیے ہیں کہ جن میں جو ہے انہوں نے بہت ہی بنیادی ترین نکات کو اٹھایا ہے. وہ نکات آپ کے سامنے عرض کر دوں خلاصتاً، پھر ان کا قول سناتا ہوں کہ حق حاکمیت جو ہے وہ منحصر ہے. منحصر ہے یعنی صرف خدا سے مربوط. ایک، اگر خدا سے مربوط ہے تو بس دین میں کس کی پیروی کی جائے، دوسرا سوال. تیسرا یہ ہے کہ اگر ولایت و حکومت خدا کا حق ہے تو پھر رسول اور رسول کے بعد جو حکومتیں آئیں ان کا کیا ہوگا. ٹھیک. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قانون گزاری کا حق صرف صرف خداوند عالم کو، وہ قانون وضع کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، وہ جانتا ہے. اور پانچواں نقطے کا، پیغمبر اکرم اور تمام رسول اور آئمہ طاہرین کس ولایت اور حکومت کے حامل تھے. توجہ رکھیے گا، اگر انسان کسی کی اطاعت کرے تو کیسے کرے. چنانچہ وہ پانچ بنیادی سوال ہیں یا نکات ہیں جن کو امام خمینی نے بیان فرمایا. پہلا چیز یہ کہ حق حاکمیت خداوند عالم کی ہے، اور تنہا وہ ذات ہے کہ جو تمام حقیقتوں سے مطلع ہے اور تمام چیزوں میں قدرت رکھتی ہے اور تمام چیزوں کی مالک ہے. بس حق حاکمیت جو ہے، حکومت اسی کا حق ہے. یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرے، تسلیم محض ہو جائے، عبد بن جائے. عبد بن جائے یعنی اس کی روح، اس کی حقیقت عبودیت ہو، جو خدا کہے اسے قبول کرنا ہے. اور اس بنا پر ضمناً انسان کو حق نہیں کہ دوسرے انسان کی اطاعت کرے. توجہ رکھیے گا، اب یہاں سے کیا وہ مشکافی کر رہے ہیں مخمنی. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے انسان کی اطاعت کرے، مگر الا مگر یہ کہ اس شخص کی اطاعت کرے جس کی اطاعت حکم خدا سے، خدا کی اطاعت تصور کی جائے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و اطیع الرسول انسان کی اطاعت ہے، لیکن حکم خدا سے رسول کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت ہے. اسی طریقے سے اولی الامر منکم، اطیع امر ہے، فعل امر ہے، وجوب بھی دلالت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ در حقیقت یعنی اس شخص کی اطاعت جو رسول کے بعد آ رہا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے، وہ پھر آگے آئے گا، اس کی اطاعت. اور پھر دوسرا نقطہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اور کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سامنے تسلیم اور تسلیم کرنے اور تسلیم ہونے اور سر جھکانے پہ مجبور کرے، میری بات مانو، ڈکٹیٹرشپ یا آمریت. اور اسی کو ہم اصل آزادی کہتے ہیں، قانون آزادی کہتے ہیں. قانون آزادی کا یعنی کسی کو حق نہیں کہ اپنی حکومت تھوپے، کسی کو حق نہیں کہ وہ مجبور کرے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس کو یہ بھی حق نہیں کسی ملت، قوم، ملک کو مجبور کرے کہ ہمارا کہنا مانا جائے. دوسرا ایک اور نقطہ جو امام خمینی یہاں پہ نقطہ نتیجے کے طور پہ دیتے ہیں، اور ان کو یہ حق نہیں کہ دوسروں کے بارے میں قانون وضع کریں، قانون کو ان کے لیے قرار دیں کہ یہ قانون مانو، اس قانون کی پیروی کرو. چنانچہ اور اپنی خواہشات کو اور اپنے مضمون مقاصد کو دوسروں پر نہ تھوپے. بس کہتے ہیں کہ اس بنا پر قانون خداوند عالم کا حق ہے، وہ جو قانون بنائے گا ہمیں عبودیت و بندگی کے تحت اسے قبول کرنا ہے، اور اس قبول کرنے کے تحت خدا جس کی اطاعت کرنے کا حکم دے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے. خوب، یہ ایک اور نقطہ ہو گیا. پھر فرمایا کہ کیوں خداوند عالم حکومت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند عالم مطلع ہے، علیم ہے، अलीमुन खबीर है, बहुत ज़्यादा खबर रखने है, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है, हकीकतों से आगाह है। सआदत व कमाल इंसान और तमाम इंसानी माशरों की खुशबख्ती का इल्म दर हकीकत खुदावंद आलम को है, और ये सब इताअत के साए में मुमकिन है। इंसान मुती हो जाए, उबूदियत और बंदगी के राह पे आ जाए खुदा की, और तमाम इंसान उसकी बंदगी के दायरे में दाखिल हो जाएँ, वो सआदतमंद हो जाएंगे। और ये कवानीन सआदत दर हकीकत अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इब्लाग किए गए हैं, पहुँचाए गए हैं। और इंसानों का इन्हितात और सुकून जो है वो दूसरों की आज़ादी सल्ब करने या दूसरों को अपने सामने तस्लीम करने के नतीजे में हासिल होता है। इंसान दूसरों की आज़ादी सल्ब करे, इंसान दूसरों पर कदगन लगाए, पहरे बिठाए, या दूसरों को मजबूर करे कि हमारी बात मानो, जो तवागीत का किरदार है। वल्लज़ीन कफरू औलियाहुम अत्तागूत युख्रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, जो खुदा कह रहा है युख्रिजूहुम मिनन ज़ुलुमात इला नूर, खुदा तारीकियों से निकलते नूर की तरफ, ये क्या काम, उल्टा काम करते हैं। लिहाजा इंसानों को चाहिए कि ऐसे इंसान के सामने खड़े हों जो उन्हें अपनी बंदगी की तरफ, अपनी इताअत की तरफ, अपने कानून की तरफ बुलाता है और अपनी इताअत की जंजीरें उन्हें पहनाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि ऐसे अफराद के लिए क़याम, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क़याम करें, और उन तमाम इस्तेदादी और इस्तेमारी और तागूती और साम्राज्य कवानीन का बायकाट करें जो इंसानों को इंसान का ग़ुलाम बनाती हैं। लिहाजा कहते हैं कि कानून तौहीद से हम ये इल्हाम लेते हैं कि तमाम इंसान खुदा बंदे आलम की बारगाह में यकसां हैं, एक जैसे हम बंदे हैं उसके, तमाम उसकी मखलूक और बंदे और उसकी खिलकत हैं। लिहाजा किसी को किसी पर कोई फ़ौकियत बरतरी हासिल नहीं, मगर ये कि तकवा और पाकिजगी और इन्हराफ और ख़ता से दूरी के नतीजे में। बस इस बिना पर हर वो चीज़ जो इस्लाम, जो इंसानी माशरे को ख़ता, गलती और हकीकत से दूर की तरफ ले जाए, अपने मनमाने अकायद और क़ानून और नज़रिए की तरफ ले जाए, उससे मुबारजा और जंग करनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ क़याम करना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं मोहम्मद, एक और नुक्ता अर्ज़ करते हैं। देखिए, अब जब फ़कीह जब बहस कर रहा है अपने सियासी नज़रियात की, तो उसके कलामी नज़रियात को पढ़ना पड़ेगा कि उसका बेस क्या है, उसका बुनियाद क्या है, वो किस उसूल के तहत जो है इस्लामी और सियासी नज़रियात को वज़ा कर रहा है। अब मोहम्मद ने ये बताया कि हक़ हकमत खुदा की है, एक दो, अगर पैरवी करें तो उसकी करें जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत अल्लाह के हुक्म से, तीन, हक हुकूमत और हक कानून के जरिए खुदा का है, उसी में सआदत बशर है और तमाम इंसानों की सआदत है, तमाम दुनिया की सआदत है, और अम्बिया अलैहिस्सलाम को अगर कोई विलायत हासिल है तो वह हुक्म खुदा से हासिल है, और किसी भी इंसान को हक नहीं है कि वो दूसरे की आज़ादी को सल्ब करे और उन्हें अपने गुलाम बनाए, और तमाम इंसानों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों, ऐसे नज़रियात और ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हों जो इंसान को इंसान का गुलाम बनाते हैं। अब कहते हैं कि किसकी इताअत जायज़ है। अब दूसरे मरहले जो हक हकमियत तो आ गया, अब दूसरा मरहला क्या है, खौफ चलें जो अल्लाह है और अल्लाह के बाद कौन है, किसकी इताअत जायज़ है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं, हुकूमत की तासीस और उसकी इताअत करना, मुताबियत करना हो, उसकी क्या सिफात होनी चाहिए, असकसी रवा वजा अस के मालिक हमें चीज़ मरदुम बाशद। फरमाते हैं कि उसकी जायज़ है इताअत करना कि जो लोगों का असल मालिक हो, कि जो उनके उमूर में तसर्रुफ़ कर सके, बता सके ये हलाल है ये हराम है, हलाल है तो इसलिए, हराम है तो इसलिए, वाजिब है तो इसलिए, मुस्तहब है तो इसलिए, तमाम चीज़ों से आगाह हो, वो बता सकता है, उनके उमूर में उनके माल में तसर्रुफ़ कर सकता हो और उसका तसर्रुफ़ जो है वो नाफिज हो, और ऐसा अगर कोई है तो वो ज़ात मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जल्ल जलालहु इज़्ज़शानहु है, वो मालिक मौजूदात खालिक अर्द व समा है। बस जो कुछ भी वो हुक्म करेगा वो उसका अपना होगा और नाफिजुल अमल होगा, सब कुछ उसकी इताअत करनी होगी। और अगर वो किसी को हुकूमत दे ज़मीन पर तो उसकी इताअत अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इताअत तसव्वुर की जाएगी। यही वजह है कि अम्बिया और आइम्मा जो लाजिमुल इताअत थे और तमाम इंसानों पर उनकी इताअत और पैरवी लाजिम फ़र्ज़ है कि उनके कहने पे चले, क्योंकि उनकी इताअत जो अल्लाह की इताअत है अल्लाह के हुक्म से, न कि ख़ुद बनाई हुई इताअत है। और इंसान को चाहिए कि वो किसी भी इंसान के हुक्म को ना माने मगर ये कि हुक्म खुदाई मौजूद हो। उसके बाद कशफुल असरार में मखनी फरमाते हैं, उसके बाद एक और नतीजा अक्स करते हैं मखमनी, वो कहते हैं कि अब ये जो विलायत हासिल हुई है इसकी नौइयत क्या है, इसका इसको हम कैसे देखते हैं। फरमाते हैं कि ये जो विलायत है ये किसी के करार देने से बना देने से हासिल नहीं होगी, विलायत उसको हासिल है, कमांड उसको हासिल है, अथॉरिटी उसको हासिल है जिसको अल्लाह ने करार दिया। ला यनालो अहदी अहदी मेरा उधर नहीं पहुँचेगा, अवालिमिन ला यनालो अहदी जालिमिन मेरा उधर नहीं पहुँचेगा। इन्नी जाइलो का मैं तुम्हें बना रहा हूँ, लिन्ना से मामा इन्नी जाइलुन फिलहाल खलीफा मैं बना रहा हूँ खलीफा, तवज्जो रखिएगा। तो ये विलायत जो दे रहा है वो खुदा दे रहा है। तशय्यु में जो और अहल तसन्नुन में जो एक बुनियादी कलामी मसला है वो रसूलुल्लाह के बाद विलायत हुकूमत का है। हम अहल सुन्नत से ये कहते हैं कि चले जी बिलफर्ज मान लिया कि आपने एक कमेटी बनाकर अपने तीन जो है सकीफ़ बनी सादा में एक गवर्नमेंट बना ली, एक हुकूमत निज़ाम बना लिया। ये मशहूर तो है, मारूफ तो है, अक्सरियत तो इनके साथ है, लेकिन इसकी मशरूइयत कहाँ से लाएंगे, इसका शरई जवाज़ कहाँ से लाएंगे, आपके पास क्या दलील है रसूल अल्लाह की कि रसूल अल्लाह ने ये फरमाया हो कि मेरे बाद जो हुकूमत आएगी आम लोगों की इंसानों की जो मेरे असहाब में से हो वो शरई होगी, उसकी इताअत अल्लाह की इताअत होगी। अब ये तो अहले तशय्यो का अकीदा है कि इमाम मासूम होता है, इमाम को मंसूब किया गया, उसकी इताअत जो है वो अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत है। तो मशहूरियत और शोहरत और मारूफियत का होना अलग चीज़ है और मशरूइयत और शरई होना अलग चीज़ है। लिहाजा इमाम खुमैनी कहते हैं कि ये मशरूइयत यानी शरई होना किसी की नियाबत का, खिलाफत का, विलायत का, ये किसी के करार देने से बना देने से हासिल नहीं होती है, बल्कि ये ज़ातन जो है वो खुदावंद आलम का काम है कि जिसको चाहे है तो यजल रसालतहु के तहत जो है वो जिसको चाहे इसको करार दे। लिहाजा आम उमूर में हम देखते हैं कि इंसान जो है उकलाई तौर पर इस बात को तस्लीम करता है कि वहाँ पे विलायत तसव्वुर की जाती है। आप किसी को अपना वकील बनाते हैं, अपने जानशीन बनाते हैं, अपना नायब बनाते हैं और वो आपके उमूर को अंजाम देता है। तो कहते हैं कि यही चीज़ जो है खुदावंद आलम ने भी इख्तियार की कि हक़ हुकूमत खुदा का है, लेकिन उसने अम्बिया अलैहिस्सलाम को दी और फिर ख़त्म नबूवत के बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम अहलुल बैत से जो हैं उनको दी है। और यही वजह है कि आइम्मा के अलावा जो हुकूमतें थीं वो गासिब हुकूमतें थीं, गैर शरई हुकूमतें थीं, नाजायज़ हुकूमतें थीं, तशय्यो के कानून कानून के मुताबिक, तशय्यो के कलामी अकायद के मुताबिक, क़ुरान के मुताबिक, तवज्जो रखिएगा, सुन्नत रसूल के मुताबिक, तशय्यो असल सुन्नत रसूल है, तशय्यो असल क़ुरान है। लिहाजा कानून तशय्यो के तहत, उसूल तशय्यो के तहत, उसूल नबुव्वत सुन्नत रसूल और हुक्म क़ुरानी के तहत अइम्मा के अलावा जो हुकूमतें थी वासिब थी, वो ना हक थी, वो हक़ पे नहीं थी, और उन्होंने अगर कहीं तसरफ़ किया है तो वो बेजा तसरफ़ किया है और गैर शरई तसव्वुर किया है। फिर आते हैं कि क़ानून गुजारी का हक़, इसको मोहम्मद एक और नतीजा अख्त करते हैं, किसी का हुक्म किसी पर नाफिज़ुल अमल नहीं है मगर ये कि खुदा जो तमाम मखलूक और ममलूक का खालिक और मालिक है और उसका हुक्म जो है वो तमाम इंसानों पर नाफिज और लाजिमुल इताअत है। और क़ानून गुजार जो है, क़ानून बनाने वाला, क़ानून वज़ा करने वाला जो है यानी शारे, वो कौन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद आलम की ज़ात है कि जो क़ानून को बनाती है और सब उसकी इताअत करते हैं। फिर कहते हैं कि दुनिया, एक और नुक्ते मौक़ नहीं फरमाते, दुनिया और आखरत का क्या रबता है। कहते हैं दुनिया और आखरत का रबता बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक है उसको दुनिया को आखरत की खेती करार दिया गया है और जुदाई नहीं हो सकती इन दोनों में। बस दुनियावी ज़िंदगी की बुनियाद पर उखरवी ज़िंदगी का फ़ैसला किया जाएगा। उसके बाद इमामखुमैनी आते हैं और एक और नतीजा उस करते हैं, यानी ये इमामखुमैनी के कलामी अकायद से हम दर हकीकत से तलावार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। उसके बाद इमामखुमैनी फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए थे, इरसाल किए गए थे, उनका बुनियादी तरीन मकसद क्या था, वो एक आदलाना निज़ाम और आदलाना हुकूमत और इंसाफ के माशरे का क़याम था कि जहाँ पर इस्लामी कवानीन को नाफिजुल अमल बनाया जाए और जहाँ पर इंसानों की तरबियत की जाए ताकि वो खुदा आलम की उबूदित बंदगी के काबिल बन सकें। अब कहते हैं इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अब यहाँ पे जब अम्बिया की बात आ गई तो अब आते हैं एक और अहम तरीन नुक्ते को अर्ज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि पैगंबर अकरम और आइम्मा की जो विलायत थी वो विलायत तशरीई व विलायत सियासी थी, जिसको मैंने पहले अर्ज़ किया, मशहूरियत अलग चीज़ है, मशरूइयत अलग चीज़ है, शोहरत पज़ीर होना, मारूफ होना, अक्सरियत का होना ठीक है, लेकिन मशरू कहाँ से लाएंगे आप, शरीयत का हुक्म कहाँ से लाएंगे कि जनाब फ़लाँ 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 इंसान के रसूलुल्लाह के बाद उसकी इताअत जो है वो अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है, हुक्म कुरान के तहत, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अहले सुन्नत के पास इसका जवाब नहीं है कि वो शरई हैसियत कहाँ से लाएंगे। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह खिलाफत को का ओहदा रखते हैं तो अम्र खुदा से है और खुदवंद आलम ने उनको खलीफा करार दे, खलीफतुल्लाह फिल अर्ध करार दिया है। अगर आदम को बनाए इन जाल फिल अर्ध खलीफा तो रसूलुल्लाह को भी खलीफा बनाया है, ना ये कि रसूल ने अपनी मर्ज़ी से कोई हुकूमत बना ली है, तश्किल हुकूमत ये नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि यही वजह है अल्लाह ये चाहता था कि जो मसाइल पेश आने वाले हैं, रसूलुल्लाह हाजत अलविदा के बाद मदीने लौटते हुए उस गदीर खुम के मैदान में उस विलायत का ऐलान कर दे, या यू रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैके मिन रब्बिक, पहुँचा दो वो हुक्म जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम तक पहुँचाया जा चुका है, या यूर से बल्ले उनज़िला उनज़िला नादिल कर दिया गया है, यानी नादिल हो चुका है, तवज्जो रखिएगा। लिहाजा वहीं पर रसूल ने उस बयाबा में गदीर खुम के मैदान में जो है खुदावंद आलम के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत के लिए मुअय्यन फरमाया, न ये कि उनका दामाद और उनका चचाजाद भाई था, बल्कि वो वमा यंतक़ के तहत अम्र खुदा का ताबे था। ये सब जो हैं वो सईफ़ इमाम खुमैनी कशफुल असरार और विलायत फ़कीह से मैं हवाले अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर फरमाते हैं कि नतीजा यहाँ पर इमाम खुमैनी एक और इससे लेते हैं कि इमाम अली के तायुन बहसियत इमाम के बाद जो है एक नतीजा लेते हैं, कहते हैं हम सब विलायत के एतक़ाद रखते हैं कि रसूलुल्लाह ने वजीफ़े के मुअय्यन फरमाया और खुदावंद आलम ने उनको हुक्म दिया कि वो अपने खलीफे का तायुन करें और उमूर मुस्लिमीन की निगहदाश्त और उसको सही तौर पर चलाने के लिए एक वली का और एक साहिब का और एक मालिक का जो रसूलुल्लाह के बाद उमूर को अपने हाथों मिले उसका उसको मुअय्यन फरमाए। यानी रसूलुल्लाह ने हुकूमत एक हुकूमत की तश्कील का दर हकीकत हुक्म दिया था और हम इस बात के मोतक़िद हैं, और इस राह में अगर कोई रुकावटें आती हैं हुकूमत की तश्कील में तो उससे मुकाबला करना चाहिए, और अमीरुल मोमिनीन से लेकर इस ज़माने तक ये हुक्म जारी व सारी है और ज़माने ग़ैबत में जारी व सारी। यानी कहीं पर यह नहीं लिखा है कि ये हुकूमत जो बनाई जाएगी विलायत की ये एक ज़माने में आकर ग़ैबत सुग़रा या कुबरा में आके छुट्टी हो जाएगी, इसकी अभी वो फिर आती है बात तो अर्ज़ करूँगा। बस इमाम खुमैनी का जो सियासी नज़रिया वो बेस करते हैं इमाम खुमैनी के कलामी नज़रियात पर। इमाम खुमैनी का कलामी नज़रिया दो बुनियादों पर उस्तवार है, एक इमामत पर, एक अदल पर। अदल इलाही का तकाज़ा ये है कि रसूल अल्लाह के बाद जो एक हाकिम शरा हो, एक मुहाफ़िज़ शरा हो, मुहाफ़िज़ दीन व शरीयत व सुन्नत व क़ुरान हो कि जो उसको बयान करे उसकी हकीकत को। बस इमामत और अदल इमाम खुमैनी के कलामी अकायद की बुनियाद और कलामी अकायद इमाम खुमैनी के सियासी अकायद की बुनियाद बनते हैं, और यही वो दो नुक्ते हैं इमामत और अदल के जो तमाम इज्तिमाई इनकलाब और तब्दीलियों का पेश खेमा साबित होते हैं। उसके बाद आते हैं कि इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि इमामत की भी कुछ ख़ास सिफात हैं, तीन बुनियादी तरीन सिफात को यहाँ पर इमाम खुमैनी तशय्यो के कलामी उसूल कवानीन से ज़िक्र फरमाते हैं। और ये दर हकीकत वो शनाख्ती कार्ड है, ये वो शनासनामा है, मारफतनामा है तशय्यो की इमामत को जाने। पहले जिसे भी जाने वाला होने चाहिए, यानी जिसकी मशरूइयत, जिसकी अथॉरिटी, जिसकी सनद, जिसका एतबार अल्लाह की तरफ से भी जाने वाला है। लोगों के बनाने से कोई बनेगा नहीं, बल्कि अल्लाह के लाइना लालिबिन इन्नी जायलो का लिलनास इमामा इन्नी जायलो का इन्नी जायलुन फ़लर्द खलीफा इन्नी 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 जायलो का इन्नी जायलुन और लाइना लो आहदी, मेरा अहदा जालिम तक नहीं पहुँचेगा। पहली चीज़ क्या है कि नस होनी चाहिए, कुरान सुन्नत से वो मौजूद है। दूसरी आलमियत, इल्मी बरतरी होनी चाहिए, इल्म लदुन्नी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मासूम, ख़ता से और इश्तबाह से मासूम होना चाहिए, यानी इसमत रखता हो ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर सके। बस इस बिना पे कहते हैं कि हर वो इज्तमाई तहरीक, हर वो कानून, हर वो हुकूमत, हर वो ग्रोह जो इस नज़रिए इमामत से हट कर अपने सर को उठाएगा वो बातिल है। तवज्जो रखिएगा, वो गैर मशरू है, वो गैर शरी है, और जिसके लिए न खुदा ने इजाज़त दी है, न रसूल ने इजाज़त दी है, न इमाम ने, न कुरान ने, शरीयत ने, न सुन्नत रसूल ने इजाज़त दी है। लिहाजा कोई भी सियासी, इज्तमाई, इकतसादी कोई भी तहरीक ऐसी चलेगी जिसमें इमाम की इजाज़त ना हो वो गैर शरी है। लिहाजा यही वजह है कि तशय्यो तूल तारीख़ में ऐसी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार नज़र आई है, या उसने उनका हुक्म मानने से इनकार किया है कि जो आइम्मा के ज़माने में थी लेकिन गैर मशरू, गैर शरई थी। लोग उनके साथ तो थे, कबीलों के साथ तो थे, निज़ाम सिस्टम उनके साथ तो था, लेकिन वो गैर शरई थी। मशहूर तो थे, मारूफ तो थे, अक्सरियत तो थी, लेकिन गैर शरई थी, मशरू नहीं थे। तो वो जो रखिएगा, बस इस बना पर वो उनको गासबाना समझते थे और उनको तस्लीम नहीं करते थे। मगर इस तमाम दौरान वो इस हुकूमत की आस लगाए बैठे थे। इन्ना नरगबो इलैका फ़ी दौलतिन करीमा, यानी हुकूमत अदल, हुकूमत इंसाफ, हुकूमत आलमी, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर यमलाउल्लाहुल अर्ज़ा, अल्लाह ज़मीन को भर देगा, अदलन व क़िस्ता कमा मुलियत ज़ुल्मुन मुजौरा, जैसे खुदावंद आलम ज़मीन को अदल इंसाफ से भरेगा इमाम ज़माना के ज़रिए से, कि जैसे वो जुल्म जोर से भरी हुई होगी। और वो आपके फ़क्र और ना और इंसान पर इंसानों की जंजीरों को नाबूद करेंगे और इंसानों को खुदा की उबूदियत की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर जो है इमाम खुमैनी कहते हैं कि असर गैबत में दो बुनियादी नज़रिया सामने आए कि जब इमाम गैबत में चले गए। एक यह है कि ज़माने गैबत में जितने भी निज़ाम हैं, सियासी या इज्तिमाई या इंसानी माशरे को या इस्लामी माशरे को चलाने के लिए, वो सब गैर शरई हैं, सब गैर शरई हैं। और थे ऐसे कि जो फतवा देते थे कि मसलन कोई चीज़ ना ली जाए, खुम्स ना ली जाए, खुम्स को ज़मीन में दफना दिया जाए, इस तरह के भी नज़रियात रहे हैं। हर वो तहरीक जो उठेगी वो गैर शरई होगी, वो नाबूद कुनंदा होगी, वो नाबूद होने वाली होगी, वो गुमराह होगी, फलाँ होगी। एक नज़रिया ये है और ये कुछ लोगों का नज़रिया रहा है तशय्यों में। दूसरा नज़रिया ये है कि असर गैबत में निज़ाम अकली के तहत हमें ज़रूरत है हुकूमत को बनाने की। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, पहले किस्म के जो अफराद थे वो ये कहते थे कि तमाम निज़ाम जो हैं, पद्दो सामने आ गया, पहले ये कहते तमाम निज़ाम सियासी, तमाम इज्तमाई निज़ाम जो हैं हुकूमत के दमाने गैबत में वो ना वो गैर शरई हैं। यानी वो कहते हैं तकिया करें, खामोश, बस कुछ ना बोले, न जिहाद करें, न दिफा करें, कुछ भी ना करें, बस खामोश रहें, अपनी नमाज रोज़ा इनफरादी इबादत करें, इज्तमाईत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हुकूमत मजबूर करेंगी। लेकिन दूसरा नज़रिया क्या है कि नहीं, अक़ल के तहत, अहादीस के तहत, कुरान के तहत हमें यह हक़ हासिल है कि हम जो है वो हुकूमत बना। इमाम खुमैनी उन अफराद में से थे जो इस पर दलील देते थे और कहते थे कि यहाँ पर ज़रूरी है कि एक शरई निज़ाम को कायम किया जाए कि जो इमाम की गैबत में जो है वो ये काम कर सके। इमाम खुमैनी विलायत फ़कीह नाम की अपनी किताब में, जो नजब अशरफ के जलावतनी के दौर में आपने दुरूस दी थे, उसको मरतब की गई है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि गैबत खुबरा से अब तक तकरीबन 1000 बरस गुजर चुके हैं और मुमकिन है 100,000 साल तक, यानी 1 लाख साल तक जो है वो इमाम ना अभी तो 1,000 साल हुआ, हो तो कहते 100,000 साल गुजर जाए और इमाम ना आए, और खुदा की मसलहत हो कि इमाम तशरीफ़ नहीं लाएंगे, तो क्या इस तमाम मुद्दत में, इन तमाम सालों में हो, क्या अहकाम खुदा की छुट्टी कर दी जाए, इस्लाम को ताला लगा दिया जाए, इस्लाम को, इस्लाम पर अमल पैरा ना हुआ जाए, जिसके जो दिल चाहे करे, जिसके जो दिल चाहे लूटे खसोटे जुल्म करे, और हम बस तकैया करके बैठ जाएँ, खामोश तमाशाही बने। क्या रसूलल्लाह ने 23 साल में जहमत की, तकालीफ उठाई, मुसीबतें झेलें, उनका नतीजा ये है कि उनके 250 साल के बाद जो है, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 5-6 साल के हों और वो गैबत में चले जाएँ, तो लिहाजा पर छुट्टी कर दो, इस्लाम की ताला लगा दो और कोई काम ना करो। आया वो सिर्फ उस 250 साल के लिए थी, हजरत से लेकर 250 बरस तक, 260 हिजरी तक या 265 हिजरी तक, बस उसके बाद छुट्टी। आइए, आकलाना निज़ाम है। तो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें क्यों हैं, गैबत कुबरा और गैबत सुगरा में क्या छुट्टी कर देनी चाहिए हमें? इमाम कहते नहीं, इससे बदतर अकीदा कोई और नहीं होगा, और ये चीज़ दरहक़ी इस्लाम को बुनियादी तौर पर वज़्ज़क पहुँचाने वाली है। और फिर इसका नतीजा ये है कि न खुम्स लिया जाए, न खराज लिया जाए, न टैक्स लिया जाए, न दिफा किया जाए, जो मुसलमानों की दौलत को लूट ले, वसाइल को लूट ले, इम्कानात को लूट ले, कुदरत इफ्तिखार को लूट ले, ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, हमला करें, हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहें, फ़लस्तीन चला जाए हम बैठे रहें, इस्लामी ममालिक पर ज़ुल्म हम बैठे रहें, कश्मीर पर ज़ुल्म हम बैठे रहें, मुसलमान मुसलमान पर ज़ुल्म करें बैठे रहें, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़ुल्म हो रहे हैं, हम खामोश रहें। कहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है, इमाम ख़ुमैनी मोतक़िद थे, एतक़ाद रखते थे कि अक़ली और नकली दलाइल की रोशनी में हमें एक निज़ाम सियासी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है, जो ग़ैबत कुबरा में मौजूद हो। वो दलाइल मौजूद हैं क़ुरान में, वो दलाइल मौजूद हैं अक़ल के तहत, और फुकहाए आदिल जो हैं वो उनकी क़यादत और रहनुमाई में उस निज़ाम को चलाया जाए, जो हाकिमान शरई के उन्वान से या हाकिम शरई के उन्वान से उनकी इताअत की जाए। वह अम्मल हवादिसुल वाक़िआ फ़रजउ फ़ीहा इला रुवाति हदीसना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह। हवादिस वाक़िआ रोज़मर्रा के जो वाक़िआत आने वाले हैं, उनमें उन फुकहा की पैरवी करो जो रावी है। रावी से मुराद लिखने वाले, पढ़ने वाले, बयान करने वाले नहीं, रावी से मुराद, बहरहाल किसी मौके पे अर्ज़ करूँगा, और जब विलायत फ़कीह की जब गुफ्तगू आएगी तो वहाँ पे तफसील से उसमें हम रोशनी डालेंगे अलग, और ख़ुसूसी तौर पर विलायत फ़कीह के उनवान से वहाँ पे उसको बयान फरमाएंगे, और तमाम अकली और नकली दलाइल को आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। बस इमाम ख़ुमैनी दर हकीकत इस तरीके से जो है वो कलामी मबाहिस को सिलसिलेवार पेश करते हैं कि हक हुकूमत खुदा का है, उसने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो दूसरे इंसानों के सामने ना झुके, उनके कानून को ना माने, और जो उनको मजबूर करता है उसके खिलाफ क़याम करे। हुकूमत का हक, कानून गुजारी का हक अल्लाह का है, वो तमाम इंसानों से बाखबर उनकी हकीकतों से। उसने जो है वो किसकी पैरवी करे, रसूल की पैरवी करे, इमाम की पैरवी करे। उस इमाम की 3 सिफ़ात हैं, उन 3 सिफ़ात में से एक में जानिब अल्लाह होना, एक आलमियत और इल्म का रखना, और तीसरी चीज़ है मासूम होना, यानी ख़ता से पाक और साफ़ होना। और फिर जो है ये विलायत जो है विलायत सियासी है, विलायत तशरीई है, विलायत तकवीनी अपनी जगह है, लेकिन विलायत तशरीई यानी हक हुकूमत, यानी हक सियासी, यानी विलायत सियासी आइम्मा के पास थी। और फिर ज़माने ग़ैबत में 2 किस्म के नज़रियात आते हैं, एक ये कहते हैं कि हर चीज़ बातिल है, बंद कर दो दरवाज़ा, तकिया करो, एक कहता है नहीं, बल्कि हमें जो है वो क़याम करना चाहिए, इंशाल्लाह जब उसके दलाल आएंगे तो अर्ज़ करेंगे। इंशाल्लाह अगली जो गुफ्तगू होगी उसमें हम जो है वो फिर मज़ीद आपके सामने अर्ज़ करेंगे, कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वहाँ पे जो है इमाम ख़ुमैनी का जो तीसरा बुनियादी उसूल है वो है मबानी फ़िक़ही व उसूली, फ़िक़ही और उसूली उसूल क़वानीन जो इमाम ख़ुमैनी के हैं, जिन पर इमाम ख़ुमैनी का सियासी नज़रिया बेस करता है, जो बहुत अहम है, उसको अर्ज़ करेंगे। और उसके बाद जो है वो नौबत आएगी कि विलायत फ़कीह पर। उसके बाद एक और भी चीज़ है चौथी, जिसको मैंने जो बयान करने से रह गई, वो है इरफानी, तवज्जो रखिएगा। बस पहली की चीज़ क्या थी, पहली चीज़ ये हो गई मबानी फ़लसफ़ी, फ़लसफ़ी मारफत, उसूल क़वानीन, उसके बाद जो है कलामी, फ़िक़्ही उसूली और इरफानी। इन 4 के बाद इंशाल्लाह फिर हम असल बहस में वारिद होंगे। वस्सलामु अलैकुम ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.